नमस्कार भारत, आज है 24 जून, दिन शनिवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। नरेंद्र मोदी आज निकल रहे हैं 3 देशों के दौरे पर। अमेरिका में होगी डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मुलाकात। मक्का की पवित्र काबा मस्जिद पर आत्मघाती हमले की कोशिश नाकाम। बातचीत बिहार के मैट्रिक परीक्षा के टॉपर से।
आना किशोर जितने क्वेश्चन पूछते गए सभी का जवाब हमने तुरंत देते गए, तो अगर गलत रहते तो वहाँ पर डर जरूर लगता, डर लगता तो हमको भी लगता, वही टॉपर का हाल मेरा भी हो जाता अगर गलत रहते तो।
और विवेचना संजय गांधी के व्यक्तित्व और विवाद पर।
जो परिवार नियोजन के बारे में सख्त नजरिया आपातकाल के दौरान में अपनाया गया, अगर वो नहीं अपनाया गया होता तो इस मुल्क में शायद कभी भी छोटा परिवार सुखी परिवार समझने की कोशिश नहीं की होती।
मगर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड्स जाएंगे। इस दौरान वह पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री ने रवानगी से पहले फेसबुक पर पोस्ट लिखकर बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से फ़ोन पर बात की। उन्होंने लिखा कि वह ट्रंप की अगुवाई वाले अमेरिका के नए प्रशासन से साझेदारी के लिए प्रगतिशील नज़रिया बनाने की उम्मीद करते हैं। ब्रिटेन के लंदन में 800 घरों को आग से सुरक्षित बनाने के लिए तत्काल खाली कराया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जांच में यह चिंता जताई गई थी कि इमारत का बाहरी आवरण शायद अग्निरोधी नहीं था। इन घरों का आवरण ग्रीनफील्ड टावर जैसा ही था, जहां 10 दिन पहले लगी आग में कम से कम 79 लोगों की मौत हो गई थी। घरों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम बहाल करने में 1 महीने तक का समय लग सकता है। तब तक इन घरों में रहने वाले करीब 4,000 लोगों को अस्थायी घर दिए जाएंगे। हालांकि कुछ लोग नोटिस न दिए जाने से नाराज भी हैं। अमेरिका ने कतर और अरब देशों के बीच जारी तनाव को गंभीरता से न लेने के संकेत दिए हैं। व्हाइट हाउस ने इस विवाद को एक परिवार का मामला बताया, जिससे अरब देश खुद निपट लेंगे। अरब देशों ने कतर के सामने ईरान से संबंध तोड़ने और मीडिया संस्थान अल जजीरा को बंद करने समेत कई मांगें रखी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अल जजीरा चरमपंथी संगठनों की आवाज़ है। इस पर चैनल के प्रबंध निदेशक जाइल्स ट्रेंडल ने कहा,
I refute that absolutely. I think what's happening is that you see Al Jazeera was witnessing.
मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूँ। मुझे लगता है कि अल जजीरा एक पूरी पीढ़ी के सपनों और अरमानों का गवाह है। इसकी जड़ें 2011 के अरब स्प्रिंग के समय हमारी कवरेज में हैं। क्षेत्र में कुछ राज्य हैं जो हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे अल जजीरा के MD जाइल्स ट्रेंडल के शब्द। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने चुनावी अभियान के रूस से कथित रिश्तों की जांच कर रहे अधिकारी को पद से हटाने की कोई योजना नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति के पास विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट म्यूलर को हटाने का अधिकार है, लेकिन वह ऐसा नहीं करने वाले हैं। इससे पहले ट्रंप ने रॉबर्ट म्यूलर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट म्यूलर जेम्स कोमी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वह देखेंगे कि म्यूलर को इस जाँच का प्रभारी रहना चाहिए या नहीं। व्हाइट हाउस प्रवक्ता सॉन स्पाइसर से जब पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा,
Is he still ruling out firing the special counsel?
विशेष अधिवक्ता को हटाने के बारे में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। उनके पास अधिकार हैं, लेकिन उनका ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। ये थे व्हाइट हाउस प्रवक्ता सॉन स्पाइसर के शब्द। आप सुन रहे हैं PBC समाचार। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने इस्लामी धर्मस्थल मक्का में चरमपंथी हमले की कोशिश नाकाम कर दी है। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों ने आत्मघाती हमलावर को उस वक्त घेर लिया जब वह एक इमारत में था, जिसके बाद उसने खुद को उड़ा लिया। इमारत ढहने से कुछ पुलिसकर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक 5 अन्य संदिग्ध चरमपंथियों को हिरासत में लिया गया है। रमज़ान के आखिरी वक्त में दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का पहुँचे हुए हैं। वेनेजुएला में सरकारी विरोध प्रदर्शनों में मारे गए एक छात्र के पिता ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से एक भावुक अपील की है। डेविड वेलेनिला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह कई साल पहले मादुरो के बॉस थे, जब दोनों एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते थे। उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो एक अच्छे सहकर्मी और दोस्त थे। PBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। नरेंद्र मोदी आज तीन देशों पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड्स की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वो आज सबसे पहले पुर्तगाल जाएंगे, जहां लिस्बन में द्विपक्षीय वार्ता के बाद वो अमेरिका रवाना हो जाएंगे, जहां वो राजधानी वॉशिंगटन डीसी में दो दिन रहेंगे। वहां पहली बार उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। नरेंद्र मोदी के पिछले अमरीकी दौरों को लेकर खासी चर्चा हुआ करती थी, इस बार कैसी चल रही है तैयारी, ये जानने के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले वाशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से बात की।
जी देखें अपूर्व, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने, जिसे हम बैकग्राउंड ब्रीफिंग कहते हैं उस हिसाब से जिनमें उनका नाम नहीं दे सकते हैं, और हमसे बात की, उसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी, उन्होंने कहा कि हम रेड कारपेट रोल करने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप प्रशासन के दौरान पहले ऐसे विदेशी नेता होंगे जिनके लिए व्हाइट हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि हर जो बातें हैं जिनका जिक्र में हो रहा है, H-1B वीजा हो, आतंकवाद हो, व्यापार के रिश्ते हैं हो दोनों देशों के बीच में, ऊर्जा की बात हो, इन सब बातों पर बातचीत होगी। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा था कि भारत के बारे में वो कितना जानते हैं, क्या उन्हें पता है इन दोनों रिश्तों की अहमियत के बारे में, तो उस पर उन्होंने कहा कि उनको ब्रीफ किया जा रहा है और उनका जो भारत के बारे में उनकी जो जानकारी है उसको बढ़ाने की तैयारी पूरी चल रही है। तो एक तरह से अभी तक, इस वक्त तक, यानी कि जब हमारी बात हो रही है, भारत में शनिवार की सुबह होने को है, लेकिन बहुत एक स्पष्ट सी जानकारी नहीं मिली थी कि क्या उत्साह है भी अमरीकी खेमे में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद जो घरेलू राजनीति है उससे में उलझे हुए हैं इस वक्त। तो इस ब्रीफिंग के बाद थोड़ा सा ये लगा कि हाँ तैयारी हो रही है यहाँ व्हाइट हाउस में भी। ये भी उन्होंने कहा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा दोनों नेताओं की तरफ से, लेकिन एक साझा बयान दोनों की तरफ से जारी होगा, तो सबकी नजर इस पर रहेगी।
अच्छा, सरकारी आयोजन के अलावा और भी किसी तरह का कोई आयोजन होने वाला है क्या? क्योंकि याद आ रहा है जब गए थे मोदी अमेरिका और टाइम्स स्क्वायर पे, जो भव्य वहां पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन्स में हुआ था, उस तरह की कोई तैयारी इस पर है या बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है?
उस तरह की तैयारी नहीं है जैसा मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ या सैन होजे कैलिफोर्निया में हुआ, जहां हजारों की भीड़ जुटी थी। यहां अमरीकी वक्त से रविवार को करीब 600-700 भारतीय समुदाय के लोगों के साथ एक तरह का आप कह लें रिसेप्शन जैसा किया जा रहा है एक होटल में जो वॉशिंगटन के ही अंदर है, और वहां प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन अगर उसकी तुलना हम करें मेडिसन स्क्वायर गार्डन से या वेम्बली से, तो बिल्कुल ही नहीं। ये एक आमतौर पर जो पहले होता था, जो पारंपरिक तौर के का जो रिसेप्शन हुआ करता था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आते थे, तो उस हिसाब से काफी लो की आप कह सकते हैं माना जा रहा है। अमरीकी मीडिया में भी अभी बिल्कुल किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है उनके दौरे को लेकर के।
और ये भी कहीं खबर देखने में आ रही है कि गार्डियन ड्रोन्स, इनको भारत को बेचने के बारे में शायद अमरीका तैयार हो गया है, क्या इस बारे में कोई खबर निकल कर आई है?
ये एक बहुत अहम चीज होने जा रही है अगर ये हो जाता है, कि ये जो गार्डियन ड्रोन्स है, ये निगरानी ड्रोन्स होते हैं जो खासतौर पर समुद्री तटों पर की जो लंबी लंबी दूरियां होती हैं उन पर नजर रखने के लिए। और भारत लगभग 2015 से ही इसको हासिल करने की कोशिश में रहा है, $2 अरब का ये सौदा है। और खबरें इस तरह से आ रही हैं कि अमेरिका ने मन बना लिया है ये बेचने का, क्योंकि आमतौर पर उन्हीं देशों को अमेरिका ये टेक्नोलॉजी, अभी तक सिर्फ दक्षिण कोरिया को दिया है अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी, और उन्हीं देशों को जो सही मायने में औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदार होते हैं अमेरिका के। तो भारत को अगर ये सचमुच ये मिलता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ एक और बात कहना जरूरी है कि इसकी मंजूरी कांग्रेस को देनी होती है, और यही वजह है कि स्टेट डिपार्टमेंट हो या व्हाइट हाउस हो, वो इस पर खुलकर कोई बात नहीं कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ गई है या नहीं। सूत्रों के हवाले से जरूर कुछ समाचार एजेंसियां इसके बारे में बात कर रही हैं ये, लेकिन मुमकिन है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर चाहें तो वो इसका ऐलान कर सकते हैं, और अंदाजा है कि ये इसे एक बिग टिकट आइटम के तौर पर अगर देखा गया तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से इसका ऐलान हो सकता है।
वॉशिंगटन से ये थे ब्रजेश उपाध्याय। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, आज रात खबर आई सऊदी अरब से, जहां अधिकारियों का कहना है कि वहां मक्का में काबा की पवित्र मस्जिद को निशाना बनाने की एक चरमपंथी योजना को नाकाम कर दिया गया है। वहां सऊदी गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने एक आत्मघाती हमलावर को उस वक्त घेर लिया जब वो एक रिहायशी इमारत में था, जिसके बाद उसने खुद को उड़ा लिया। इमारत ढह गई और कुछ पुलिसकर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए। 5 अन्य संदिग्ध चरमपंथियों को हिरासत में ले लिया गया है और ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान ख़त्म होने को है और ऐसे में दुनिया भर से लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों ने इस योजना के बारे में कोई ब्यौरा और नहीं दिया है, लेकिन हाल के वर्षों में सऊदी अरब में कई गंभीर हमले हुए हैं, जिनमें कई हमलों का दावा तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने किया। ज़्यादातर हमलों में देश के शिया अल्पसंख्यकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। 2016 में मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद पर हुए एक आत्मघाती हमले में 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। सऊदी अरब, सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट और अन्य जिहादी गुटों के खिलाफ अमेरिका की अगुवाई में लड़ने वाले गठबंधन में शामिल एक प्रमुख देश है। और अब रुख भारत का। केंद्र सरकार ने भारत में हाल ही में एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत तपेदिक या टीबी के किसी भी मरीज को अस्पताल में अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर नकद सहायता मिलेगी। क्या है ये नई अधिसूचना और क्या वाकई में इससे मिल सकेगा टीबी मरीजों को लाभ? दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
बड़े से गलियारे में एक माँ अपने 4 बच्चों को संभाल रही है और उसकी नज़र थोड़ी दूर व्हीलचेयर पर बैठे एक शख्स पर है जो अपने नंबर आने का इंतजार कर रहा है। इस व्यक्ति का नाम अशोक है और 2 महीने से दिल्ली में भारत के प्रतिष्ठित राजन बाबू टीबी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इनकी पत्नी शालू हर 3rd दिन बच्चों के साथ मंगोलपुरी से इन्हें बस में बैठा कर लाती हैं और उसके अलावा 5,000 रुपये महीने की एक नौकरी करके घर चला रही हैं। शालू ने बताया,
3 बच्चे हैं,
किराए पे रहती है
और 4 महीने का बच्चा है। 4 महीने का बच्चा है और उसकी वजह से ये भी बीमार हो गई है। नहीं, वो इसके ऊपर ही खांसते रहते, इसको भी इसकी तबीयत ख़राब है, इसको डॉक्टर को दिखाया है। फैक्ट्री में काम करती हूँ, मेरे को उसमें 5,500 रुपये मिलते हैं, बस 5,500 रुपये मिलते हैं, उसी में घर ही घर चलता है, किराया निकल जाता है बस।
सरकार जब बात कर रही है कि अगर टीबी के मरीजों को उनको कुछ पैसे भी देंगे,
ना तो हमने ऐसा सुना है और ना ही अभी तक हमें ये बात मालूम हुई है कि भाई पैसे मिलेंगे और ना ही हमें पता लगा है।
शालू को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ये अधिसूचना जारी कर दी थी कि अगर किसी टीबी के मरीज के पास आधार कार्ड है तो उसके बैंक खाते में नकद सहायता भी मिल सकेगी। भारत के सरकारी अस्पतालों में टीबी का इलाज मुफ्त होता है और बिना आधार कार्ड दिखाए भी मुफ्त रहेगा, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं कि अगर किसी को सरकार से आर्थिक मदद चाहिए तो उसके लिए आधार कार्ड होना या उसके आवेदन की रसीद होना अनिवार्य है। साल 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 25 लाख से भी ज्यादा टीबी के मरीज थे। चिंता का बड़ा विषय ये भी है कि टीबी का प्रकोप शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक फैला हुआ है। ग्लोबल कोएलिशन ऑफ टीबी एक्टिविस्ट नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ब्लेसिना कुमार के मुताबिक पहल तो अच्छी है लेकिन इस पर फैसला सुनाना जल्दबाजी होगा। ब्लेसिना कुमार ने कहा,
वैसे तो हम देखते थे ये अच्छे सिस्टम है, इसमें जो भी बीच में जो रुकावटें हैं वो सब निकल जाएगा और डायरेक्टली जो भी पेशेंट्स का बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली उनका उनके पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हम तो जानते हैं जो भी यहाँ पर डिसीशन स्कीम्स जो दिल्ली में बनता है वो जब तक मतलब हमारे गांव तक जो पहुंचेगा, जो छोटे छोटे डॉट सेंटर्स तक पहुंचेगा, ये बिल्कुल बदल जाता है। वहां पर तो लोग पेशेंट्स को वापस भेज देते हैं, तुम्हारे पास एड्रेस की प्रूफ नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है करके।
दिल्ली के इतने नामी ग्रामीण अस्पताल में कम से कम 7 मरीजों और उनके परिवारजनों से बात करने पर पता चला कि उनको अभी तक नकद मिलने वाली इस अधिसूचना का कोई अंदाजा नहीं। खजूरी के रहने वाले 19 वर्ष के राहुल यहाँ अपनी माता का इलाज करा रहे हैं और दूसरी तरफ घर में उनके पिता को आखिरी स्टेज का कैंसर है। राहुल ने बताया,
हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं जी,
इतना खर्चा नहीं चलेगा, किराया भाड़ा कहाँ से देगा, गाँव चले तो गाँव तो ज्यादा तकलीफ होगी दोनों आपके, इनकी मम्मी करी पापा फिर
कमाने वाला कोई है नहीं, 2 बहन 2 भाई,
बड़ा ही बड़ा तो ये इससे बड़ी छोटी
कमाने वाला कोई घर में है भी नहीं,
लड़की
पापा के वैसे भी।
ज्यादातर लोगों को आधार कार्ड दिखाकर टीबी के इलाज में नकद मदद मिलने की योजना तो समझ में आई, लेकिन अभी उनको इस बात का भरोसा नहीं दिख रहा है कि दरअसल मदद हर उस व्यक्ति तक पहुंच सकेगी जिसको उसकी जरूरत है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
टॉपर घोटाले को लेकर पिछले साल सुर्खियों में रहे बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में इस बार लखीसराय के मानो गांव के प्रेम कुमार ने बाजी मारी। पिछले साल के टॉपर घोटाले के बाद सतर्क हुए बिहार बोर्ड ने इस बार किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए रिजल्ट घोषित करने से पहले टॉप 10 छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया था। इनमें प्रेम कुमार भी थे। क्या वो और उनके जैसे छात्र अपने परिणाम को लेकर आशंकित थे? यही पूछा हरिता कांडपाल ने प्रेम कुमार से।
गलत रहते तब न डर रहता, गलत है ही नहीं तो डर किस बात की। हमको कुल मिलाकर मैम 465 अंक है जो कि 93% है, और हमको मैथ और साइंस में 100, सोशल साइंस में 89, संस्कृत में 91 और हिंदी में 85 मार्क्स, इंग्लिश में 70 मार्क्स।
आपके पिता एक किसान हैं, किस तरह से परिवार का पूरा किस तरह परिवार चलता है? क्या आप भी अपने पिता की मदद करते हैं, खेतों में जाते हैं? पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निकाल पाते थे आप?
पर्याप्त समय पिताजी पर दे ही देते थे, शाम में खेलने धूपने के साथ साथ थोड़ा मोड़ा काम भी करवाते थे। खेत में जो भी काम होता था, जो पापा से नहीं होता था, हम भी करते थे, हाथ बताते थे उनका साथ ही।
अब आगे आपने क्या सोचा है?
हम मैडम अभी जो है साइंस पढ़ना चाहते हैं। साइंस में क्योंकि हमको साइंस में 100 मार्क्स आए और मैथ में भी 100 मार्क्स आए, इसीलिए अभी हम साइंस लेंगे। उसके बाद हमको आगे जीवन में IAS ऑफिसर बनना है, क्योंकि अभी तक गांव में एक भी IAS ऑफिसर नहीं है, और गांव का नाम फिर से एक बार रोशन करना।
नकल को लेकर काफी चर्चा बिहार में होती है, आप क्या कहेंगे अब ऐसे बच्चों से जो अभी और परीक्षा देने वाले हैं आगे जाकर, तो आप क्या कहेंगे सभी छात्रों से?
हम उन लोगों से कहेंगे कभी भी जीवन में गलत नहीं करना, अगर गलत करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक है कि डर लगेगा। गलत नहीं रहेंगे, अगर साफ रहेंगे तो कहीं भी हमको कोई भी पूछेगा बोलेगा तो हम उसका जवाब देंगे, जैसा कि हम लोग पटना बिहार बोर्ड ऑफिस में किए। आनंद किशोर जितने क्वेश्चन पूछते गए सभी का जवाब हमने तुरंत देते गए। तो अगर गलत रहते तो वहाँ पर डर जरूर लगता, डर लगता तो जरूर हड़बड़ी में गड़बड़ी होता, और हमको भी लगता वही टॉपर का हाल मेरा भी हो जाता अगर गलत रहते तो। हाँ, वहाँ पर तो हम 3 दिन गए, लेकिन 21 तारीख को कहें मैम चेयरमैन साहब स्वयं हमसे बातचीत किए थे, आधा घंटा का इंटरव्यू लिए, क्वेश्चन जितना मन हुआ उतना क्वेश्चन पूछे।
बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा के टॉपर प्रेम कुमार। और अब समय हो चला है आज के अखबारों पर नजर डालने का। कुलदीप मिश्र साथ हैं हमारे अखबारों के साथ। कुलदीप, क्या दिखाई दे रहा है आज की खबरों में?
जी, एक तो भीड़ की ओर से की गई हत्या की 2 खबरें हैं। पहली खबर है श्रीनगर में एक पुलिस अधिकारी की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इसमें दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, हुर्रियत प्रमुख मस्जिद में इस्लाम का पढ़ा रहे थे पाठ और बाहर भीड़ ने DSP को मार डाला। जो बाकी शीर्षकों से थोड़ा अलग है, श्रीनगर की जामा मस्जिद के बाहर अलगाववाद के समर्थकों ने की बर्बरता, ये भी उन्होंने लिखा है। दूसरी खबर है, मथुरा जा रही एक ट्रेन में एक नाबालिग मुस्लिम लड़के से की कथित तौर पर इसलिए हत्या कर दी गई कि जब सीट को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन वह फिर एक धार्मिक झगड़े में तब्दील।
बिल्कुल दिल्ली के पास की ये घटना, बिल्कुल ये खबर आई है।
और हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी है कि पंजाब विधानसभा में एक संशोधन पारित करके ये इंतजाम कर दिया गया है कि अब हाईवे पर भी शराब बेची जा सकेगी, जो कि उन्होंने लिकर सेल यानी शराब की बिक्री की परिभाषा बदल दी है, और इसे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में एक चोरी की खिड़की बन गई है जिसमें हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की बिक्री का
नाम लगा रहे हैं
उसकी परिभाषा बदल दी है लिकर सेल की। अमर उजाला ने खबर दी है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच पद के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा करके 9 जुलाई कर दी गई है, और अखबार ने लिखा है कि ऐसा संभवतः रवि शास्त्री के लिए किया गया है और इसे शास्त्री के दौड़ में आगे होने के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है।
पिछली बार भी वो दौड़ में शामिल थे
और अनिल कुंबले से हार गए थे। दैनिक जागरण ने खबर दी है कि 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों यानी बुजुर्गों का पासपोर्ट शुल्क आज से 10% कम होने वाला है। अच्छा। एक खबर, चूंकि इफ्तार का मौसम है तो इफ्तार की पार्टी में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है इसको लेकर के भी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। तो 2 खबरें हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस ने दी है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इफ्तार पार्टी में केंद्र सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा। अच्छा। इस पर सीताराम येचुरी का ये बयान है कि इतने सालों में पहली बार है कि राष्ट्रपति की इफ्तार पार्टी में केंद्र सरकार का कोई मंत्री ना
दूसरी पार्टी जो आप कह रहे हैं वो शायद बिहार वाली होगी, जहां पर
दूसरी बिहार वाली पार्टी है जहां लालू और नीतीश मिले। तीसरी पार्टी भी है जो दिल्ली में हुई और अरविंद केजरीवाल की उस पार्टी में कुमार विश्वास को न्योता नहीं दिया।
अच्छा। तो इफ्तार और राजनीति साथ साथ चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका। और अब समय हो चला है विवेचना का। आज विवेचना संजय गांधी पर, जो अगर जिन्हें आज़ाद भारत के सबसे विवादास्पद राजनीतिज्ञों में से एक माना जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आपातकाल की ज्यादतियों, परिवारवाद, मारुति कार और जबरन नसबंदी के लिए कुछ लोग उन्हें विलन करार देते हैं तो कुछ लोग उनकी साफ गोई और कुछ करने के उनके जज्बे की तारीफ भी करते हैं। संजय गांधी की 37वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं को आप तक पहुँचा रहे हैं रेहान फजल आज विवेचना में।
एक बार मशहूर पत्रकार विनोद मेहता से पूछा गया कि इतिहास संजय गांधी को किस तरह से याद करेगा। उनका जवाब था, इतिहास शायद संजय गांधी को इतनी तवज्जो न दे और उन्हें नज़रअंदाज ही करे। कम से कम मेरी नज़र में भारतीय राजनीति के पर्दे पर उनका वजूद एक मामूली ब्लिप की तरह था। ये तो रही विनोद मेहता की बात, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय राजनीति में संजय गांधी की भूमिका को दूसरे नज़रिए से देखना पसंद करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे पुष्पेश पंत कहते हैं,
कहीं ना कहीं एक दिलेरी उस आदमी में थी, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बेहतरी का एक सपना भी था, जिसको आज शायद लोग याद करें तो लोग कहेंगे आप गांधी परिवार के चमचे हैं, चापलूस हैं, मगर जो परिवार नियोजन के बारे में सख्त नजरिया आपातकाल के दौरान में अपनाया गया, अगर वो नहीं अपनाया गया होता तो इस मुल्क में शायद कभी भी छोटा परिवार सुखी परिवार समझने की कोशिश नहीं की होती।
लेकिन जिस तरह से परिवार नियोजन कार्यक्रम में जबरदस्ती की गई, उसने भारत के जनमानस को कांग्रेस पार्टी से बहुत बहुत दूर कर दिया। कुमकुम चड्ढा हिंदुस्तान टाइम्स की वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने संजय गांधी को बहुत करीब से कवर किया है।
किस तरह से उन्होंने कहा लोगों को, अपने जो लोगों को कैरी आउट करने में, आई डोंट नो, बट एक टारगेट ओरिएंटेड वो था कि ये टारगेट्स मीट करने चाहिए, एंड व्हेन दे वर मीटिंग दोस टारगेट्स, सबको फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स थे, तो सब लोग यू नो दे वांटेड टू जस्ट प्रूव इट, दैट वाज वन पार्ट। बट ऑन द अदर हैंड, संजय के पास कोई जाकर ये नहीं कह सकता था कि ये नहीं हुआ, दे वर वेरी स्केर्ड ऑफ हिम, देयर वाज अ फियर साइकोसिस। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि संजय हैड नो पेशेंस, तो उनकी डेडलाइंस हमेशा यस्टरडे होती थी, तो इसलिए अगर टारगेट्स मीट करने थे, नंबर्स दिखाने थे, तो लोगों को या जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे उनको बहुत जल्दी में करना था, और वो जल्दी एक जल्दबाजी में बदल गई विद द रिजल्ट दैट इट वेंट हॉरिबली रॉन्ग। और अगर संजय को ये लगा होता कि ये गलत हुआ है, या क्योंकि उसमें सेंसरशिप थी, कोई वहां जाकर हिम्मत नहीं करता था जो जाकर बता सकता कि आप ये नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक संजय वॉज इन अ मूड टू लिसन, आई डोंट थिंक ही वॉज द काइंड हु वुड लिसन, एंड आई डोंट थिंक मोर इम्पोर्टेंटली दैट देयर वर मेनी पीपल Who would even dare to tell him?
संजय गांधी पर सबसे गंभीर आरोप था इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश देना, कड़ाई से सेंसरशिप लागू करना और सरकार के कामकाज में बिना किसी आधिकारिक भूमिका के हस्तक्षेप करना। जब उन्हें लगा कि इंदर कुमार गुजराल उनका कहना नहीं मानेंगे तो उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। जग्गा कपूर अपनी किताब वॉट प्राइस परजरी फैक्ट्स ऑफ द शाह कमीशन में लिखते हैं,
संजय ने गुजराल को हुक्म दिया कि अब से प्रसारण से पहले सारे समाचार बुलेटिन उन्हें दिखाए जाएं। गुजराल ने कहा, यह संभव नहीं है। इंदिरा दरवाजे के पास खड़ी संजय और गुजराल का वार्तालाप सुन रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब इंदिरा मौजूद नहीं थी, संजय ने गुजराल के मुंह पर कहा कि आप अपना मंत्रालय ढंग से नहीं चला रहे हैं। गुजराल का जवाब था, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो सभ्य और विनम्र होना होगा। मेरा प्रधानमंत्री का साथ तब का है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हें मेरे मंत्रालय में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है।
जो लोग संजय गांधी के करीब थे उन्होंने इमरजेंसी के दौरान उनका पूरा फायदा उठाया और लोगों के बीच उनकी छवि खराब करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। इनमें से एक थी अभिनेत्री अमृता सिंह की माँ रुखसाना सुल्तान।
एक लेवल पे बहुत गॉसिप था। रुखसाना सुल्तान यूज्ड टू मेक इट वेरी वेल नोन, इवन टू मी शी यूज्ड टू से दैट ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। रुखसाना सुल्तान हैड अ लॉट ऑफ पावर व्हिच शी वील्डेड फ्रॉम हर फ्रेंडशिप विद संजय गांधी। उस पावर को रुखसाना सुल्तान ने बहुत मिसयूज किया, चाहे वो फैमिली प्लानिंग के उसमें था, चाहे यू नो वर्ल्ड सिटी में। सो शी वॉज संजय गांधी फेस, एंड इफ संजय गांधी वॉज हेटेड इट वॉज बिकॉज शी कैरिड आउट इन हिज नेम वेदर इट वॉज फैमिली प्लानिंग और यू नो वट एवर। सो रुखसाना सुल्तान ड्रू स्ट्रेंथ एंड आई थिंक शी इन वन सेंस मिसयूज पावर। अगर कोई दोस्त होता है एंड इफ योर फ्रेंड इज डूइंग इनकरेक्ट, आई थिंक दैट वॉज संजय गांधी बिगेस्ट मिसफॉर्चून। कोई नहीं था उनके फ्रेंड्स में जो उनको उठ के कह सकता कि नो दिस फार एंड नो फर्दर, यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट।
संजय गांधी की आम छवि कम बोलने वाले मुंहफट शख्स की थी। इनके मन में अपने सहयोगियों के लिए कोई इज्जत नहीं थी, चाहे वो उनसे उम्र में कितने ही बड़े क्यों ना हो। लेकिन एक जमाने में संजय गांधी के करीबी और यूथ कांग्रेस के नेता रहे जनार्दन सिंह गहलोत बताते हैं।
उस व्यक्ति में रफनेस कतई नहीं थी, वो स्पष्टवादी जरूर थे, जो सही मायने में इस देश की जनता आज के स्पष्टवादिता की अब तक तो स्वीकार कर नहीं पाई है। और आज जो चापलूसों का जमाना है, जो चापलूसी करते हैं, मीठी बात करते हैं, जो हर पॉलिटिशियन एक दूसरे को भ्रम में डालकर उसे गुमराह करते हैं, मैं सोचता हूँ उससे वो हटके अलग था। इसलिए उनकी इमेज इस ढंग की बनती रहती थी कि ये रफ है, रफ वफ तो नहीं थे, लेकिन ये है जो बात उनको ठीक लगती थी वो कह देते थे कि नहीं आप ठीक नहीं कर रहे हो और आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं नहीं मानता कि आप ठीक कर रहे हो। देश के लोगों ने बाद में स्वीकार ही किया कि उनकी जो 500वां कार्यक्रम था शायद वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे।
इसी तरह की बात संजय गांधी के एक और सहयोगी रहे संजय सिंह कहते हैं, जो एक बार अमेठी से सांसद रह चुके हैं और इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं।
दो तीन क्वालिटीज उनकी बहुत अच्छी हमें लगी। एक, बड़ी साफ बात करते थे और स्पष्टवादिता थी और बड़े सौम्य थे, बड़े वेल बिहेव थे, और एक प्रयास करते थे कि कम से कम बात हो लेकिन मैसेज ठीक से लोगों को समझ में आ जाए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज थी कि कोई चीज स्वयं जब कहते थे हाँ तो उसको करने का पूरा प्रयास करते थे और उसी तरह आशा करते थे कि कोई भी जो बात करे उसको पूरा करे।
संजय गांधी की इस नकारात्मक छवि बनाने में उनकी तथाकथित रूखे व्यक्तित्व ने बड़ी भूमिका निभाई। विनोद मेहता संजय गांधी पर लिखी अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं।
एक अकबर रोड पर संजय का दिन सुबह 8 बजे शुरू होता था। इसी समय जगमोहन, किशन चंद, नवीन चावला और PS भिंडर जैसे अफसर संजय को अपनी डेली रिपोर्ट पेश करते थे। इसी समय वो संजय से आदेश भी लेते थे। इनमें से ज्यादातर लोग उन्हें सर कहकर पुकारते थे। जगदीश टाइटलर बताते हैं कि संजय बस एक दो शब्द ही बोलते थे, मैंने उनको कभी चिल्लाते हुए नहीं सुना। उनके आदेश क्रिस्टल की तरह साफ होते थे। उनकी याददाश्त बहुत जबरदस्त थी। ठीक 8:45 पर वो अपनी मैटाडोर में बैठकर गुड़गांव में मारुति फैक्ट्री के लिए रवाना हो जाते थे। वो समय के इतने पाबंद थे कि आप उनसे अपनी घड़ी मिला सकते थे। ठीक 12:55 पर वो दोपहर का खाना खाने घर लौटते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी के आदेश थे कि दिन का खाना परिवार के सब लोग साथ ही खाएं। दोपहर 2 बजे से उनका लोगों से मिलने का सिलसिला फिर से शुरू होता था। इस बार उनसे मिलने वालों में केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और यूथ कांग्रेस के नेता होते थे। उन्हें मिलने का जो वक्त दिया जाता था वो कुछ इस तरह का होता था, 4:07, 4:11 या 4:17। जब कोई कमरे में घुसता था तो ना तो वो उसके स्वागत में खड़े होते थे और ना ही उससे हाथ मिलाते थे।
आम लोगों के मन में संजय गांधी की छवि एक मैन ऑफ एक्शन वाले शख्स की है, जिसके पास धीरज की कमी थी। आम धारणा के खिलाफ वो शराब, सिगरेट तो दूर, चाय पीना तक पसंद नहीं करते थे।
उनका एक शौक था कि वो गाड़ी बहुत तेज चलाते थे। तो एक बार हम और अंबिका सोनी और संजय गांधी तीनों पंजाब के टूर से आ रहे थे। उनकी एक आदत थी, वो खुद अपनी गाड़ी चलाते थे और हालत ये थी कि हमारे हाथ पैर फूल रहे थे, हमको डर लग रहा था कि गाड़ी एक्सीडेंट होगी। वो इतना फास्ट चलाते थे गाड़ी को, इसलिए हमें उनको बार बार हम टोकते थे। उनका एक डरते हो क्या, वो प्लेन जिस दिन वो उड़ाने के लिए गए थे, मुझे मालूम है मेनका जी ने जाके इंदिरा जी को कहा कि वो प्लेन उड़ाने जा रहे हैं, कल भी इन्होंने गोता खाए थे तो आज इनको रोका जाए, तो जब तक इंदिरा जी बाहर रोक ले गई, जब तक वो अपनी मेटाडोर उठा के निकल चुके थे और उसी दिन ये हादसा हो गया। उस व्यक्ति के रहन सहन और उनकी जो सादगी थी, लोग चाहे उनके बारे में कुछ भी कहते थे, वो कैंपा कोला पेप्सी तक पीना पसंद नहीं करते। लोगों को एडवाइस करते, पान क्यों खाते हो, ये सुपारी क्यों खाते हो, मत खाया करो, ये मत किया करो। तो मैं सोचता हूँ कि उस आदमी का अपना एक अलग सोच था, एक देश के नौजवानों को अलग ले जाना चाहते थे, और उसमें सादगी का जहां तक प्रश्न है, मैंने कभी उन्हें कोई बहुत कुछ पहने हुए या कोई जो एक साधारण कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति के तौर से मैं कहूँ कि अगर जो कहता था वो करता था, जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी उनका वही काम था। ऐसा नहीं कि आज हम देखते हैं पॉलिटिशियन दिन में कुर्ता धोती पहनते हैं, शाम को टी शर्ट में घूमते हैं।
रेहान पटेल, बीबीसी दिल्ली।
तो नमस्कार भारत में आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अब शाम 7:30 बजे। आज तकनीकी सहयोग दिया इस कार्यक्रम में तिलक राज भाटिया ने, अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें, नमस्कार।